ओम शांति। आदरणीय भाई साहब का हम सभी करतल ध्वनि से अभिवादन करते हैं। भाई साहब यज्ञ की विशाल सेवाओं को संभालने के निमित्त हैं, उनका मैं थोड़े शब्दों में परिचय देना चाहूंगी। आपने कॉमर्स एवं लॉ डिग्री प्राप्त की है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन 1956 में फर्स्ट क्लास पास उत्तीर्ण किया, 1957 से चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस प्रारंभ की एवं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से समर्पित हैं तथा विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की जिम्मेवारी भी आप पर है। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं तथा आर्थिक कानूनी तथा सामान्य प्रशासन संभालते हैं। आप वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्य हैं। आप ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी के फाउंडर सेक्रेटरी हैं, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जूरिस्ट विंग के आप नेशनल चेयरपर्सन हैं, स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर उसके भी आप नेशनल चेयरपर्सन हैं। आदरणीय भाई साहब एक अच्छे लेखक भी हैं, आपने कई किताबें लिखी हैं। प्योर मनी इकोनॉमिक्स पर लिखी गई पुस्तक पवित्र धन, जिसे हम में से अनेकों ने पढ़ा होगा, पवित्र धन आपकी अर्थशास्त्र एवं जीवन दर्शन के समन्वय की गहन समझ के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने कई लेख नाटक एवं नृत्य नाटिकाएं भी लिखी हैं। आपको यूनाइटेड नेशंस तथा इसकी यूएसए एवं यूके से संबंधित एनजीओज द्वारा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। आपने विश्व के लगभग सभी देशों का भ्रमण कर बाबा का संदेश पहुंचाया है। हॉलीवुड और बॉलीवुड की तर्ज पर जो बाबा का प्यारा गॉडलीवुड स्टूडियो बना है, आपके संकल्पों का ही साकार रूप है और जिसके द्वारा देश विदेश में विभिन्न प्रकार से डायलॉग्स ड्रामास टेलीफिल्मों के द्वारा सेवाएं चल रही हैं। ऐसे आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में हैं और बाबा की मुरली को हमें बहुत गहराई से समझने में हमारी मदद करेंगे। आदरणीय भाई साहब
ओम शांति। बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको भी सामने ही लिखा हुआ है 77वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की हार्दिक बधाइयां हो और साथ साथ हम सबको अपने डिवाइन दैवी अलौकिक जन्मदिन की भी बधाइयां हो। जैसे आज मोहिनी बहन ने कहा अनेक प्रकार की जयंती आज है, जिस पर हमने कहा कि दादी जानकी का विदेश की एक बहन ने 97 वर्ष की है उनकी आयु, तो इसलिए 97 प्रकार की उनकी विशेषताओं की एक लिस्ट बना करके दी भेजी हुई है। इस प्रकार से हमारे में भी आप में से कोई ऐसा अनुभवी भाई या बहन हो जो 77वीं त्रिमूर्ति जयंती के साथ साथ 77 प्रकार की जयंतियां आज के दिन कैसे हैं उसके बारे में इसका लिस्ट बना दे तो हम समझते हैं, हम ज्ञानामृत में भी इसको प्रिंट कर सकते हैं कि कैसे कैसे अनेक प्रकार की जयंतियां हाँ बाबा के दिव्य अवतरण के साथ साथ गाई हुई है और इसके कारण क्या होगा, दुनिया को मालूम पड़ेगा कि बाबा की गतिविधियां जो है वो कितनी विशाल है और हर कोने के कने के अर्थात हर समय के साथ साथ हर वस्तुओं के साथ साथ बाबा का दिव्य अवतरण संलग्न है, कनेक्टेड है। और इसके आधार पर देखो क्या क्या होता है। कल की मुरली आप सबने सुनी, हम सबने सुनी, उसके ऊपर थोड़ा विस्तार से समझाने का मेरे को ड्यूटी मिली हुई है। मैंने टाइमिंग नोट किए हुए हैं, मैं हमेशा नोट करता हूं ताकि मालूम पड़े, क्योंकि बाबा हम बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। गुलजार दादी स्टेज पर 7:24 को आकर के बैठे, संदल पर बैठे, 7:25 को गीत बजना शुरू हुआ और 7:31 6 मिनट के अंदर गुलजार दादी बाबा के पास वतन में गई। 7:34 को बाबा का रथ के अंदर बाबा की दिव्य पदरामणी हुई। 7:31 को बाबा ने दृष्टि देना शुरू किया और 7:45 को बाबा ने मुरली शुरू की। मुरली का जो मेन ऑपरेटिव पार्ट जो है वो 8:40 तक चला। बाबा बहुत स्लोली 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 बोलते थे, जिसके कारण करीब 7:45 के वो 16 मिनट और ये 40 कुल 56 मिनट बाबा की मुरली चली। उसके बाद 2 जोन भोपाल और इंदौर जोन से बाबा ने मुलाकात की। 8:40 से 8:54 तक 14 मिनट तक 2 जोनों से बात किया। उसके बाद बाबा ने डबल विदेशी या कहो डबल पुरुषार्थियों से 8:54 को मुरली में उनसे उन्होंने से मुलाकात की और 9:02 तक चली। 9:02 से बाबा मधुबन निवासियों के साथ बातचीत करते रहे करते रहे करते रहे और वो 9:20 तक चली। 9:02 से 9:20 तक 18 मिनट चली। उसके बाद बाबा ने 5 मिनट हम सबको अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराया। उसके बाद स्टेज का कार्यक्रम जो है 9:41 को शुरू हुआ और 10:21 मतलब 40 मिनट स्टेज का कार्यक्रम चला और 10:20 को बाबा हम सबसे विदाई लेकर के गए और 10:21 को गुलजार दादी वापस इस वतन में अपने तन में पधारी। इस प्रकार से टाइमिंग के हिसाब से ये है। इस अनुभव आपने किया होगा, इस सीजन में बाबा ज्यादा में ज्यादा 2 घंटा ठहरता है। कल बाबा प्रेम के नियम नहीं होता है, इसके कारण 7:34 को आए और 10:21 को गए। इस प्रकार से आप गिनती करें तो 2.5-3 घंटा करीब हो जाता है। उसके अंदर मुरली चलाई, इसके अंदर ये झंडा भी लहराया, इसके अंदर केक भी काटा, भोग भी खिलाया खाया आदि आदि सब कुछ किया। तो ये है कल का मुरली का टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से है। बाबा ने आकर के पहले ही दिन बता दिया, मुरली का पहला वाक्य होता है वो मुरली का, मुरली में आने वाली बातों का सार होता है। उसमें बाबा ने कहा कि आज बाप दादा बच्चों को अपने जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं। हर एक बच्चों के नैने में बाप और अपने जन्म की खुशी दिखाई दे रही है। कोई मुझे पूछे कि कल की मुरली का हार्द हृदय एसेंस क्या था, आप सबने भी सोचा होगा कि बाबा के मुरली का हार्द क्या है। बधाइयां देना वो तो कॉमन बात है, हर वर्ष बताते रहते हैं। कल की मुरली का अगर कोई बात कहे मुझे तो मैं समझता हूं कल बाबा ने एक नई बात कर दी, जिसको अगर हंसी की दुनिया में बात करना हो हंसी के लाइटली, तो बाबा ने कल स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर खोल दिया। स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर, आप जानते हैं ब्यूटी पार्लर, हमारे यहाँ आबू रोड में भी 3 ब्यूटी पार्लर है। आबू रोड में 3 ब्यूटी पार्लर है। एक ब्यूटी पार्लर वाला को मेरा मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको कहा कि आपका यहाँ आबू रोड में क्या धंधा चलता होगा। तो उसने मुझे कहा कि रमेश भाई इतना धंधा चलता है कि मुझे खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। कहने का भाव यही है कि आज की दुनिया में ब्यूटी का ब्यूटी पार्लर के रूप में फेस का फेशियल आदि क्या क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, और जो करते हैं तो इसी के हिसाब से कल बाबा ने ये ब्यूटी पार्लर खोल दिया, डिवाइन ब्यूटी पार्लर। और इसके कारण क्या होगा, हम सबकी जो शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक ब्यूटी जो है उसको निखारने के लिए बाबा ने प्रयत्न किया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, इस ब्यूटी के अंदर ये होना चाहिए। यार मैं इसलिए हमेशा असी में आपको कहूं कि ये इंटरनेशनल डिवाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। आप सबको ये शब्द पसंद है, इंटरनेशनल डिवाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट है। और सर्वश्रेष्ठ जो ब्यूटीफुल बनेगा अपने पुरुषार्थ आदि के आधार पर, आदि आदि बातों के आधार पर, उसको लक्ष्मी नारायण का पद मिलेगा। बराबर है, वर्ल्ड वर्ल्ड ब्यूटीफुल डिवाइन ब्यूटीफुल पर्सनालिटी होंगी, किसकी होंगी, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की। तो ये है वर्ल्ड ब्यूटी वर्ल्ड डिवाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। आप हम सब इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में है, और इसलिए सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी मानसिक आत्मिक बौद्धिक ब्यूटी कितनी आगे बढ़ी हुई है। तो आज से ये सब ध्यान में रहे, हम सबका क्या हो रहा है, डिवाइन ब्यूटीफिकेशन, डिवाइन ब्यूटीफिकेशन। हमारा आत्मिक सौंदर्य जो है हमारा आत्मिक सौंदर्य, हमारा बौद्धिक सौंदर्य, हमारी मानसिक सौंदर्य, हमारे संस्कारों का सौंदर्य जो है वो बाबा बढ़ा रखे हैं। तो इसलिए लाइटली जरा हंसते रहना, क्योंकि बाबा ने कल भी कहा, इसके हिसाब से ये ध्यान में रहे कि हम कौन है, हम डिवाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट के कॉन्टेस्टेंट है। और जितने जितनी अच्छी ब्यूटी सौंदर्य, आत्मिक सौंदर्य, बौद्धिक सौंदर्य, मानसिक सौंदर्य धारण करेंगे, इतना इतना हमारा ऊंचा पद होगा। और सर्वश्रेष्ठ पदधारी वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट का नंबर वन लक्ष्मी नारायण होंगे। तो ये एक नया दृष्टिकोण जो है ईश्वरीय सेवा का एक अभिगम है कल के मुरली के आधार पर। और उसमें पहली बात आपकी ब्यूटी में पहली बात क्या होनी चाहिए, तो बाबा ने कल कहा आपके नयन नयन, ये जो है ना आज की दुनिया में आप जानते होंगे ये जो ये नयन के ऊपर की जो होती है ना वो निकाल देते हैं और उसके ऊपर आर्टिफिशियल लगाते हैं। दो क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज के, वो ये भी निकाल देते हैं और नया ब्लैक का या नया करते हैं, और नीचू में भी करते हैं, नीचू में भी और ऊपर में, दोनों जगह पर करते हैं। इस प्रकार से अनेक लोगों का अनेक तरीका होता है अपने शारीरिक बौद्धिक भौतिक जो भी कहो ब्यूटी बढ़ाने का। तो बाबा ने आध्यात्मिक ब्यूटी बढ़ाने के लिए पहला पहला स्थान कौन सा, तो हमारा नयन। हमारे नयन कैसे होने चाहिए, कितना ब्यूटीफुल होना चाहिए, डिवाइन ब्यूटीफुल होना चाहिए। बाबा ने कहा कि आपके नयन जो है अपने जन्म की खुशी खुशी दिखाई दे रहे, इस प्रकार से अपनी खुशी, अपने जन्म की खुशी दिखाई दे। और फिर बाबा ने कहा कि यह वंडरफुल जयंती क्या है, बाप और बच्चों के साथ साथ है, क्योंकि बाप आए हैं यज्ञ को रचने के लिए और यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए, इसलिए बाप और बच्चों की इकट्ठी जयंती हुई है। और बाबा ने स्पष्ट बता दिया इस जयंती का, त्रिमूर्ति शिव जयंती सामने ही लिखा हुआ है, तो ये जयंती का लक्ष्य है विश्व परिवर्तन करने का, इसलिए बाबा ने उसका नाम दे दिया विश्व परिवर्तन की जयंती। साधारण जयंती नहीं है, साधारण लौकिक बर्थ की जयंती नहीं है, परंतु है विश्व परिवर्तन की जयंती। इसलिए बाबा ने सबको मुबारक भी दिया और कहा ये विश्व परिवर्तन की जयंती है। और पहले पहले बच्चों ने बाप के साथ प्रतिज्ञा ली हुई है कि विश्व में जो अंधकार है उसको, अंधकार को रोशनी बनाने वाली है। फिर ब्यूटी में दूसरी बात, डिवाइन ब्यूटी के अंदर दूसरी बात मस्तक। मस्तक जो है, मस्तक के अंदर क्या होना चाहिए? मस्तक पर चमकती हुई लाइट देख रहे बाबा। हम सबके मस्तक पर, जैसे आप जानते हैं ना, वीआईपी की मोटर कार होती है, आप सबने देखा होगा वीआईपी की मोटर कार होती है, उसके मोटर कार के ऊपर लाल रंग की या ब्लू रंग की, हाँ एम्बुलेंस के ऊपर भी होती है, लाइट होती है, होती है ना, सबने देखा होगा। हाँ बड़े बड़े शहरों में तो खास होता है, और उसमें लाल लाल होती है, ब्लू होती है, कईयों की पीली रंग की होती है, ऐसी होती है। तो इस प्रकार से हमारे भी ये क्या होना चाहिए, चमकती हुई लाइट देख रहे। तो हमारे चेहरे पर, हमारे मस्तक पर क्या होना चाहिए? चमकती हुई लाइट देख रहे। अब ये लाइट क्या दिखा देंगी, इनसे क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया में तो ये एक वीआईपी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऐसे ही बताया जाएगा। हमारे यहाँ बाबा के पास क्या है, इस मस्तक पर चमकती हुई लाइट से क्या होगा? यह लाइट, देखो बाबा का कितना सुंदर प्रास है, यह लाइट। हाँ कौन सी लाइट? चमकती हुई मस्तक, चेहरे पर मस्तक पर चमकती हुई लाइट। यह लाइट सर्व आत्माओं को भी लाइट बना करके, देखो एक ही शब्द का दो अर्थ है, लाइट रोशनी भी होता है, लाइट माना हल्का, क्योंकि भारी चीज होती है उड़ नहीं सकती, हल्की जितनी होती है, लाइट वेट जितना होता है इतना अच्छा होता है। तो इसलिए यह लाइट सर्व आत्माओं को, भक्तों को भी लाइट बना करके। तो हम क्या करना चाहिए, हम फक्त चेहरे की लाइट का नहीं, परंतु अपने आप को भी लाइट, भारी मत बनिए। हमारे कई बहन भाई है ना, ऐसे भारी होते हैं, ऐसे भारी होते हैं, ऐसा लगता है कि किसी का, उनका घर का कोई मर गया होगा, और इसके कारण हमेशा ही ऐसे भारी होते हैं। बात मत पूछो, हंसने का तो नाम ही नहीं लेते हैं, ऐसे भारी होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इसके बदले में आपका चेहरा लाइट दिखाई पड़े, और इसके कारण क्या होगा, विश्व को अंधा, विश्व में जो अंधकार है उसको लाइट मिल जाए, उसको रोशनी मिल जाए। तो एक ही शब्द लाइट, चमकती हुई लाइट, मस्तक पर चमकती हुई लाइट, फिर वो हमको लाइट बना देंगी, और इसके आधार पर क्या होगा, विश्व के अंधकार को मिटाने वाली ये रोशनी या ये लाइट होगी। तो ये हमारी ब्यूटी का, डिवाइन ब्यूटी का फल स्वरूप है कि विश्व को हम लाइट देंगे। ये डिवाइन ब्यूटिफिकेशन ऐसा है कि हमें लाइट बना दे। आज की दुनिया में भी ऐसा ही है ना, लोग पतला बनाना चाहते हैं। हम ब्यूटी की दुनिया में एक मालूम है, जीरो ब्यूटी, जीरो ब्यूटी करके एक प्रोग्राम बनते हैं, जिसके अंदर मिनिमम ब्यूटी, मिनिमम शरीर का वजन होना चाहिए, इस प्रकार से होता है। और इसलिए क्या क्या करते हैं, खाना पीने में ध्यान रखते हैं, कहीं खाते नहीं है कि क्या करते हैं। और बाबा ने फिर क्या कहा, तीसरी बात कही कि ये चाहते हैं कि हर बच्चा अपने चेहरे को लाइट बना करके इस जीवन में सदा खुश देने का संदेश दे। एक लाइट भी बना करके उसका भी संदेश, और तीसरा ये चेहरे के द्वारा क्या होगा, सबको खुश रहने का संदेश दे। हमारा जैसे वो दुनिया में होता है ना, ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटी की क्या होती है। तो इसलिए ये हमारी ब्यूटी जो है उसके आधार पर क्या सबको मिलेगा, खुश रहने का संदेश मिलेगा, और उसके आधार पर क्या होगा, सबको सुख शांति की अनुभूति हो। याद रहे बाबा ने शब्द यूज किया हुआ है अनुभूति हो, सुख शांति का संदेश नहीं, सुख शांति का ज्ञान नहीं। प्लीज नोट करके रखिए, सुख शांति का ज्ञान नहीं, सुख शांति का संदेश नहीं, परंतु सुख शांति का अनुभूति करावे। आप समझ गए ना, एक संदेश देना दूसरी बात होती है, और अनुभव कराना दूसरी बात। मैं आपके सामने एक टोली ऐसा दिखाऊं और बताऊं तो आप कहेंगे इसमें क्या हो गया, ये तो दिखाइए, परंतु अगर आप उसको खाते हैं, मुख में रखते हैं और चबाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी अनुभूति होगी। और इस प्रकार से ऐसा अनुभव करना चाहिए कि ऐसा ज्ञान होना चाहिए, या तो ऐसी सुख शांति अनुभव करावे जिसके कारण क्या होगा, ये सुख शांति की अनुभूति के आधार पर क्या होगा, बहुत सुंदर लक्ष्य बाबा ने हम सबको दिया कि एक हर बच्चा फरिश्तापन, फरिश्तेपन का अनुभव दुनिया को करावे, हमारी डिवाइन ब्यूटी का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, फरिश्ता बनना। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने फरिश्ता की डेफिनेशन बताई है, आपको सबको याद होगा, फरिश्ता की डेफिनेशन है जिसका लौकिक दुनिया के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, लौकिक दुनिया के साथ, लौकिक दुनिया के आत्माओं के साथ, लौकिक दुनिया के ब्लड कनेक्शन वाले सबके साथ रिश्ता नहीं हो, और रिश्ता किसके साथ हो, एक परमात्मा के साथ हो। सर्वे जो है ना, गीता में भी जो श्लोक है पांडव गीता में, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु, अर्थात सब प्रकार के सभी संबंध जो है एक पिता के साथ हो, इसको कहेंगे फरिश्ता। तो ऐसे फरिश्ता बनने का लक्ष्य ये हमारी ब्यूटी का डिवाइन ब्यूटी का अल्टीमेट एम ऑब्जेक्ट है। फिर बाबा ने कहा कि आप सब आए हो, बाप का जन्मदिन मनाने आए हो या साथ में अपना भी जन्मदिन मनाने आए हुए हैं। और फिर बाबा ने, बाबा की तरफ से वायदा पक्का है, बाबा की तरफ से वायदा पक्का है, हाँ? बाप का वायदा है, क्या वायदा है, सदा साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और राज्य में आएंगे। बाबा का वायदा पक्का है, हम सबका वायदा पक्का है, हाँ? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राज्य में आएंगे। संभालना, हाँ, साथ चलने में बहुत मुसीबत है, कहीं ऐसा न हो धर्मराजपुरी में जाकर के साथ में चले, बाबा तो धर्मराजपुरी में आएगा नहीं। एक भाई ने हमको कहा कि नहीं, बाबा भी धर्मराजपुरी में आएगा, मैंने कहा नहीं आएगा, कहा आएगा, मैंने कहा कैसे, कहा जज बनकर के बैठेंगे ना धर्मराज के रूप में, धर्मराजपुरी में धर्मराज बनकर के कौन बैठेगा, धर्मराज बैठेगा ना, बाबा बैठेगा तो बाबा भी धर्मराजपुरी में आएंगे। मैंने कहा जज बनकर के बैठना और बात है, और सामने गुनेगार के रूप में खड़ा होना और दूसरी बात है, वो ठीक है ना, जेल के अंदर भी जेल के सुप्रिंटेंडेंट बनना और बात है, और जेल बर्ड बनना वो दूसरी बात है। तो इस प्रकार से ये बाबा के साथ ये अपना वायदा, इसके कारण हमारा पुरुषार्थ जो भी हम कर रहे हैं, जितने भी बहन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इन सबको हम बाबा के प्रश्न वायदे के आधार पर अपने दिल से ये प्रश्न पूछना है कि क्या साथ रहेंगे, यहाँ साथ बैठे हुए वो तो सब कुछ है, साथ चलने में प्रॉब्लम आएगा कि जिन्होंने इस जीवन के अंदर या तो पिछले जीवन जन्मों में किए हुए पाप कर्मों का भस्म, विकारों के पाप कर्मों के आधार पर बने हुए विकल्प को हो, सजाएं को, इसको योग की शक्ति के द्वारा भस्मीभूत नहीं किए हुए होंगे, अपना पूरा ही हिसाब किताब चुक्त नहीं किए हुए होंगे, तो क्या हो जाएगा, धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा, धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। एक हंसी की बात सुनाओ, मैंने एक बार इस प्रकार इसी के बारे में क्लास कराया था, धर्मराजपुरी में जाने, तो मैंने सभा को सवाल पूछा कि धर्मराजपुरी में आप जानते हैं धर्मराजपुरी में क्या होता है, वहां कोई सिनेमा विनेमा देखने का नहीं है, वहां तो सजा का अनुभव होगा, सजा खाने का अनुभव होगा। तो मैंने पूछा एक सभा को कि आप में से जो धर्मराजपुरी में जाने की इच्छा रखते हैं वो हाथ खड़ा करें, अभी नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैंने उस टाइम पर पूछने की गलती कर दी थी, तो बाकी सब ने तो हाथ नहीं खड़ा किया, एक भाई ने हाथ खड़ा किया कि मेरी इच्छा है मैं धर्मराजपुरी में जाऊंगा। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये भाई को धर्मराजपुरी में जाने की क्यों इच्छा है, आप देखना उसकी आशा भावना जो भी है, आप अपनी भावनाओं के साथ उसका फिर उसकी मुशावत करना। तो उस भाई ने कहा मेरा धर्मराजपुरी में जाने के लिए दो चार मकसद है। मैंने कहा कौन सा, कहा एक तो मुझे नई नई चीजें देखने का, नई नई दुनिया देखने का, धर्मराजपुरी भी एक दुनिया है, जैसे बाबा ने तीन दुनिया बताई हुई ना, उसमें चौथी दुनिया है, नहीं है, धर्मराजपुरी की भी एक दुनिया है क्या? नहीं। मैंने कहा मुझे तो अनुभव नहीं है। तो क्या हमको अनुभव, ये चौथी दुनिया है, तो ये धर्मराजपुरी है, नई दुनिया है, उसमें जाने का अनुभव करना है, फिर हमको देखना है कि बाबा कैसे सजाएं देता है, वो भी देखना है। और सबसे बड़ी बात कि हमने ब्रह्मा बाबा को साकार में देखा नहीं था, ब्रह्मा बाबा को साकार में नहीं देखा था। धर्मराजपुरी में तो धर्मराज बनकर के बाबा के राइट हैंड के अंदर अव्यक्त बाबा के साथ में राइट हैंड बनकर के बैठे हुए होंगे, तो अव्यक्त बाबा को भी वहां देखूंगा साकार रूप में और ब्रह्मा बाबा को भी साकार रूप में देखूंगा। इसलिए धर्मराजपुरी में भी जाकर के अव्यक्त बाबा के साथ साथ साकार बाबा को भी देखने की मेरी इच्छा है। मैंने कहा अच्छी बात है, हर एक की अपनी अपनी भावनाएं होती है, तो इस प्रकार से आपके भी सोचना कि साथ चलने में सीधा ही जाना है या वाया धर्मराजपुरी में जाना है। और फिर बाबा ने क्या बताया, साथ राज्य में आएंगे। ये भी विचित्र बात है, राज्य में कब आएंगे, राज्य में कब आएंगे? क्या है, सतयुग में 8 जन्म है, त्रेतायुग में 8 या 20 या 12 या 23 जन्म होते हुए सब मिलकर के 21 जन्म होते हैं। इस 21 जन्म में साथ में बाबा ने ये नहीं कहा आदि से आएंगे, बीच में आएंगे, अंत में आएंगे, कब आएंगे। आज सबकी क्या इच्छा है, साथ में आएंगे तो आदि से आना चाहते हो, यहाँ बीच में भी चलेंगे, बाद में भी चलेंगे, क्या होना चाहिए? जो बीच में आना, जो साथ में आना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर दे। शुरू से आने का, साथ में माना शुरू से आने का, सबकी इच्छा यही है ना। तो अपने पुरुषार्थ को देख लीजिए, आपकी सबकी इच्छा मैंने देख लिया कि सबकी इच्छा है आदि काल से, सतयुग की आदि से आना चाहिए, परंतु तो उसके लिए कंडीशन है बाबा की। बाबा ने कहा है सतयुग में कौन रहेगा शुरू से, जो 16 कला संपूर्ण बनेगा, बराबर है। त्रेता युग में कौन आएगा, 14 कला, फिर द्वापर से 8 कला होती है और अभी मामूली सी कला कुछ रह गई है। अर्थात एक एक कला की कीमत कितनी है उसका हिसाब करना चाहिए। जिसको कभी कभी मैं कहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी का एरिथमेटिक भी सीखना पड़ेगा, गणित शास्त्र भी सीखना पड़ेगा। 16 कला संपूर्ण बने तो सतयुग के आज से आएंगे, 14 कला संपूर्ण बने तो त्रेता की शुरुआत में आएंगे। एक भाई ने मुझे पूछा 15 कला बनेंगे तो क्या होगा, मैंने कहा 15 कला आप देख लीजिए, 2 कला 1250 वर्ष में कम होती है, बराबर है। एरिथमेटिक सीख लीजिए, बाबा का एरिथमेटिक गणित शास्त्र मैं सबको सिखा हुआ, सब स्कूल में तो गए होंगे, तो इसलिए 2 कला में 1250 वर्ष, तो 1 कला में 625 वर्ष, बराबर है। 2 कला में 8 जन्म तो 1 कला में 4 जन्म, अर्थात 15 कला संपूर्ण बने, अर्थात 15 कला संपूर्ण बने तो स्वर्ग के पहले के 625 वर्ष और 4 जन्म चले जाएंगे। 625 वर्ष चला जाएगा और 4 जन्म चला जाएगा, इसका अर्थ क्या हो गया, ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के रूप में क्या होगा, देख सकेंगे। 15 कला क्या, 15 कला संपूर्ण बनेंगे तो भी क्यों, 15 कला में तो भी पहला 2 जन्म चला जाएगा, तो इसलिए 16 कला संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखेंगे तो ही होगा। एक बार एक अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी, तो एक माता सामने बैठी थी, बहुत रो रही थी, ऊपर मेडिटेशन हॉल में बाबा आए थे, तो बाबा ने कहा बच्ची क्यों रो रही है, तो उसने कहा बाबा मुझे बहुत इसलिए रोना आता है कि मैंने आपको साकार में नहीं देखा, इसलिए मैं रो रही हूं। बाबा ने बहुत उसका उनको सवाल अच्छा पूछा, तो अभी किसके सामने बैठी है? अभी तो बाबा के सामने बैठी थी, तो बाबा ने सवाल पूछा अभी किसके सामने बैठी है, तो क्या बाबा के सामने बैठी है, तो बाबा ने कहा कि अभी सामने बैठी है तो सामने का सुख ले लो ना, नहीं मिली है नहीं मिली है नहीं मिली है, उसके दुख के आधार पर आंसू क्यों अभी बह जाती हो, संगम युग का सामने मिलने का सुख ले लो। हमारे में भी ऐसे ही है, भूतकाल की बातों को याद कर करके कई ऐसे बहन भाई है अपने जीवन के अंदर सुख अशांति, सुख दुख के बदले में, सुख शांति के बदले में दुख अशांति ही निर्माण करते हैं। भूतकाल को याद करना, बाबा ने एक मोटी में कहा है, भूतकाल को याद करना माना, बहुत कड़े शब्द यूज किया है, भूतकाल को याद करना माना भूत का भूत को बुलाना और भूत बनना, भूतकाल को याद करना माना भूत को बुलाना और भूत बनना। आप सब में से कोई ऐसा चाहता है भूत बनने का? नहीं चाहते हैं ना, भूत में ही बनना चाहते, तो फिर भूतकाल को याद क्यों करते हैं? तो इसलिए याद रहे 16 कला संपूर्ण बनना होगा, 15 कला बनेंगे तो भी पहले चार जन्म और 125 वर्ष, और 14 कला संपूर्ण बने तो सतयुग का 1250 वर्ष चला जाएगा। बहुत बड़ी भारी चैलेंज है, बहुत बड़ी भारी चैलेंज है ये, मैं हमेशा ही कहता हूँ ये ओलंपिक्स है, ये ईश्वरीय ज्ञान का ओलंपिक्स है, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में सतयुग की आदि से आने का वो लॉन्ग जंप, और हाई जंप माना लक्ष्मी नारायण की दुनिया के अंदर उसके साथ में उसके परिवार में आना, राजगद्दी को धारण करना आदि आदि, जो है हाईएस्ट पोजीशन प्राप्त करना, ये हाई जंप है और लॉन्ग जंप है। हाई जंप एंड लॉन्ग जंप दोनों के अंदर हमको नंबर 1 बनना पड़ेगा। तो ये कल की बात बाबा ने जो कही कि 7 क्या होगा, 7 राज्य में आएंगे। फिर बाबा ने अमृत वेले सबके लिए शब्द सुनाया, डायमंड शब्द सुनाया। हाँ, डायमंड शब्द याद दिलाता है हम कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, डायमंड हॉल में, डायमंड हॉल में बनकर के डायमंड बनने के लिए डायमंड शब्द सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो बाबा ने डायमंड शब्द सुनाया, हाँ कौन सा शब्द, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा ने कहा ये डायमंड शब्द सभी ने नोट किया, हाँ तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए तो क्या 3 शब्द याद रखो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और इसके फलस्वरूप बाबा ने एक वरदान दे दिया, मेरा बाबा कहो, मीना बाबा कहो, मीठा बाबा कहो, प्यारा बाबा कहो, जो भी कहो, उसके आधार पर क्या हो जाएगा, इसके आधार पर बहुत सुंदर शब्द बाबा ने यूज किया, बहुत सुंदर। आप लोगों ने मार्क किया होगा, मैंने तो मार्क किया, इसके कारण क्या हो जाएगा, सब दुख, सब दुख, एक दुख नहीं, दो दुख नहीं, 3 दुख नहीं, सब, सब माना एंटायर, सब, सब प्रकार के दुख, जो भी समझो आप, सब के अंदर सब दुख सुख में बदल जाएगा, सब दुख सुख में बदल जाएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊं, हमारे यहां से 2 भाई ट्रेन में आबू रोड से सिरोही या सिरोही से दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन में जा रहे थे, तो ऐसे ऐसे बाहर से ऐसे लटक के जा रहे थे ना, तो ये जो सिग्नल का जो थंभा होता है ना उसके साथ चक्कर खा गए। दोनों टक्कर एक के बाद एक, क्योंकि एक डब्बे के आगे में था, दूसरा पीछे में था, दूसरे डब्बे में था, एक को बहुत चोट लगी, उसने शरीर छोड़ दिया, दूसरा बच गया। तो मैं हमेशा ही इन बाबा के साथ बहुत फ्रेंकली फ्रीली बात करता हूँ। मैंने बाबा को कहा कि दोनों का एक्सीडेंट हुआ, एक ने शरीर छोड़ दिया, एक बच गया, इसका कारण क्या है? ये अभी तो बाबा ने मुझे जवाब दिया हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक को थंबा लगा, वहां ही मर गया, सर पर खोपड़ी जो है ना उसके अंदर नुकसान हो गया, और शरीर छोड़, दूसरा बच गया। आप सब को लगेगा ये क्या है, ये कैसे हुआ। बाबा ने कहा पहला बच्चा जो है ना उसने खाली चोट लगी उस टाइम पर मुझे याद नहीं किया, इसके लिए उसका कर्म भोग के हिसाब से उसको भोगतना पड़ा, उसका शरीर छूट गया। दूसरे ने जैसे चोट लगी ना चोट ने समय के शाम पर अपने मुख से उसने आवाज किया मेरा बाबा, क्या याद किया मेरा बाबा। तो क्या हुआ, कहा बाबा ने कहा कि ऐसे दुख के समय चोट लगती है तो दुख तो होता है ना, ऐसे समय पर मुझे याद किया तो मेरी क्या फर्ज है उसको पूरी मदद करने का। इसलिए मैंने उसको मदद किया क्योंकि उसने बाप को याद किया। भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही होता है ना, कहते हैं एक ने बताया ना अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था, क्यों कि मरने के टाइम पर मैं नारायण नारायण कहूंगा मैं तो समझूंगा मैं मेरे बच्चों को याद करूंगा, भगवान समझते मुझे याद करेंगे और आकर के मेरी मदद करेंगे। भक्ति मार्ग में ऐसा ही कैसी ठगी करते हैं, भगवान के साथ भी सौदा करते, क्या क्या हम लोगों ने भक्ति मार्ग में किया है आप सब अनुभवी है, क्योंकि हम सब हम पुराने भगत ही यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये बात हकीकत है, आप अनुभव करना ऐसे दुख के समय पर, ऐसे दुख के समय पर मेरा बाबा याद करो तो क्या सचमुच आपका आपके सामने आई हुई दुख रूपी आपत्ति कहो विपत्ति कहो जो भी कहो वो सुख में बदल जाती है या नहीं, आपको उसका सामना करने की संपूर्ण शक्ति बाबा दे सकता है। कल की मुरली का सार यही है, मेरा बाबा कहने से सब सुख सब प्रकार के सुख मिल सकते हैं और सब प्रकार के दुख बदल जाएंगे सब प्रकार के सुख में। कितनी सुंदर बात है, कितना सहज पुरुषार्थ है, खाली एक ही बात याद रखने की है, पर वही बात होती है हम सब पांडव हैं। कौन से पांडव है मालूम है, कर्ण जैसे पांडव है। पांडवों में एक भाई था बड़ा भाई कर्ण, मालूम होगा ना, उसको एक श्राप था, उसको एक श्राप था कि उसके पास विद्या तो थी परंतु तुम्हारे का समय पर विद्या तुम भूल जाएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगा। हम वो पांडव हैं कि समय पर ही भूल जाते, बाकी सब समय पर बाबा याद रहता है। दुख के समय पर बाबा को याद करने के बदले दुख को याद करते, दुख देने वालों को याद करते हैं आदि आदि बात होती है, परंतु दुख के समय पर बाबा को याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए संस्कार बनाने पड़ेंगे, अपने संस्कार बनाने पड़ेंगे कि कुछ भी हो जाए। और इसलिए बाबा ने कल जो लास्ट में योग कराने के समय बोला जिसका हम चर्चा करेंगे, पर ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि हमको संस्कार बनाना पड़ेगा नींद में भी। उस शास्त्रों में श्लोक है, आपने कहानी है कि भगवान को पूछा गया तुमको अर्जुन क्यों याद है, अर्जुन क्यों याद है, तो कहा चलो मैं तुमको लेके जाता हूँ। तो अर्जुन के पास गए तो अर्जुन नींद में भी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण उस प्रकार से श्री कृष्ण को याद करता था। अर्थात श्वासोश्वास बाप को याद करना, मेरा बाबा याद करना, मेरा बाबा याद करना, ये प्रैक्टिस ये अनुभूति ये अनुभव करने की बात है, ये प्रैक्टिस डालने की बात। हम कितने भी बड़े हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी पैसे वाले हो, क्या भी हो, तो ये प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी कि मेरा श्वासोश्वास चाहे नींद का चाहे याद का जिन के अंदर समय के अंदर हर समय पर मेरा बाबा ये मेरे स्वास्थ्य के साथ साथ मेरे जीवन के साथ साथ ये स्लोगन जो है ये वरदान जो है लग जाना चाहिए, ताकि क्या हो जाएगा कोई भी प्रकार का दुख आएगा वो सुख में बदल जाएगा। फिर बाबा ने फरिश्ते रूप की बात कही और फिर बाबा ने कहा आज जन्मदिन है तो इसलिए बाप सौगात देना चाहते हैं। और कौन सी सौगात, आपको मालूम होगा हमारी दादी निर्मो संता जो है ना बॉम्बे में जो भी नया आता था ना उसको कहते थे कि हम आपसे सौगात चाहते हैं, आज आप दान दे करके जाओ। मुझे याद है एक भाई जो है दादी निर्मो संता के बैठा सामने बैठा था, उसने बाबी दादी ने कहा आज तो आप आए हो, आज आपको यहाँ हमको सौगात दे के जाना पड़ेगा। तो उसने पॉकेट निकाला, पॉकेट निकाल करके 100 रुपये की नोट निकाली, कहा लो दादी आपको सौगात। तो दादी ने कहा नहीं नहीं ये हमको सौगात नहीं चाहिए। आप जानते हैं ना हमारे आदि ज्ञान के अंदर यही बातें होती थी, दादियां बहने हमको कहती थी नए को कि आपको दान में 5 खोटा पैसा दे के जाने का है। मालूम है जो पुराने जो यहाँ बैठे हुए बहन भाई उनको मालूम होगा दादियां हमारी दादी निर्मो संता हमको गामदेव में बॉम्बे में वाटल में थी, वो कहते थे 5 खोटा पैसा दे के जाने का है और एक आना देने का है। कौन सा एक आना? आने जाने का, आना आना और जाना करना वायदा देना कि हम यहाँ आते रहेंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने कल ये वायदा कराया हुआ है हम बच्चों के साथ। कौन सा? सौगात में बाबा ने कहा आज के दिन आज के दिन जो भी व्यर्थ संकल्प रहे हुए हो वह बाप को सौगात में दे दो। सबके दिल में, सबके जीवन में, सबके व्यवहार में थोड़े प्रकार के तो व्यर्थ संकल्प रहे होंगे, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। व्यर्थ की परिभाषा बहुत बड़ी है, उसके बारे में चर्चा करें तो 2 घंटा चाहिए। व्यर्थ किसको कहते हैं, समर्थ किसको कहते हैं? तो इसलिए व्यर्थ आप सब जानते हैं, सब अनुभवी है, सबके जीवन में व्यर्थ की बातें आती ही रहती है। तो इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प दे दो। उसके कारण क्या होता है? बाबा ने तो बहुत सौम्य भाषा में कहा कि व्यर्थ जो है ना टाइम बहुत वेस्ट करता है। इतनी बात नहीं है पर व्यर्थ के कारण कई बार हम नए हिसाब किताब भी बना लेते हैं, भैया फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, इस प्रकार से करते रहते हैं। इसके लिए बाबा की महावाक्य याद रहे, हम सब में एक आध्यात्मिक शक्ति आई हुई है, हम सब में है, और इसके कारण हमारी वाणी वरदानी भी बन सकती है। तो बाबा ने कहा हुआ है हमारी व्यर्थता के आधार पर बनी हुई वाणी हम औरों के लिए श्राप भी बन सकती है। इसलिए अपने संकल्प विकल्प, अपने विचार, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए, नहीं तो औरों को सुख देने के बदले में औरों को हम श्राप दे देंगे और उसके कारण नए हिसाब किताब बन जाएंगे। पुराने हिसाब किताब तो अभी सिर पर है और उसमें नए हिसाब किताब बनाएंगे, नए हिसाब किताब आप जानते हैं संगम युग में किए हुए पाप जो है नए हिसाब किताब जो उसका 100 गुना क्या 1000 गुना दंड है। तो ये नए हिसाब किताब से बचते रहना, बचते रहना, बचते रहना, यही हमारी आप सबको विनती है। और इसलिए व्यर्थ संकल्प सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता है परंतु नए हिसाब किताब बनाता है। धर्मराजपुरी में भी जाना पड़ेगा। आप सबको मालूम नहीं होगा एक बाबा अभिव्यक्त मुरली के अंदर मुरली के बाद बाबा के पास मैं बैठा था। बाबा को मैंने कहा कि बाबा मैं सबका मुझे व्हील बनाने के लिए ड्यूटी मिली, मैं उनका व्हील बनाता हूँ। व्हील बनना आप जानते मरने के बाद उनकी जो धन संपत्ति होंगी उसका किस प्रकार से उपयोग हो, तो बाबा ने कहा यह बहुत जरूरी है। मैंने कहा क्यों बाबा आपने मुझे ड्यूटी दिया है? कहा बच्चे आप बच्चे जानते नहीं हो धर्म की आप धन की जो जो है धन धन का रिजल्ट क्या होता है। मैंने कहा बताइए बाबा, आपको बताया ना मैंने पवित्र धन की किताब में बाबा के प्रसाद का अनुभव लिखा हुआ है। तो उसके अंदर बाबा ने कहा धन का एक और भी प्रभाव है। मैंने कहा बाबा क्या? कहा समझो कोई एक व्यक्ति है, कोई एक बाबा का बच्चा है, संपूर्ण बन जाता है, संपूर्ण बनकर के हम एडवांस पार्टी में भी नहीं जाता है, ब्रह्मा बाबा के पास जाकर के राइट हैंड बनकर के बैठ जाता है। मैंने कहा बाबा ठीक है फिर, परंतु अगर उसने अपना धन का अच्छा सदुपयोग का प्रोग्राम नहीं बनाया है और उसका धन रिश्तेदारों के पास गया और इन रिश्तेदारों ने उस धन के आधार पर विकर्म किए, ये खास नोट करके रखिए, अपने धन का आपने किसी अज्ञानी पुरुष को, अपने रिश्तेदारों को आदि को दिया और उसने उस धन का दुरुपयोग किया, तो जिसको लॉ में भी कहते हैं लॉ ऑफ अबेटमेंट, उनके पास पैसा आपने दिया तो उसने विकर्म किया, अगर आपने पैसा नहीं दिया हुआ होता तो विकर्म नहीं कर सकता था, आपने पैसा दिया इसलिए विकर्म बनाया, इसके कारण लॉ ऑफ अबेटमेंट चाहे लौकिक दुनिया में चाहे ईश्वरीय दुनिया में भी लॉ ऑफ अबेटमेंट होता है कि उनको ऐसा विकर्म ऐसा दंड ऐसा पाप करने के लिए आपका धन निमित्त बना और इसके कारण उसको जो सजा मिलेंगी इसकी 50% सजा आपको मिल सकती है। और इसलिए बाबा ने कहा कि अगर वो संपूर्ण भी बन गया, ब्रह्मा बाबा के पास राइट हैंड बनकर के भी चला गया, तो भी उनके धन के आधार पर बना हुआ विकर्म का एबेटमेंट उनके दंड के रूप में उसको फिर से आकर के एडवांस पार्टी में जन्म लेना पड़ेगा। आप समझिए धन का अगर उपयोग के बदले में सदुपयोग के बदले में दुरुपयोग हुआ और आप संपूर्ण बन गए तो भी आपका धन आपको इस दुनिया के अंदर एडवांस पार्टी के रूप में वापस खींच के ला सकता है, इतना ध्यान रखिए। और इसलिए अपने धन का सदुपयोग, तन मन धन उसका सफलतापूर्वक सदुपयोग करने का लक्ष्य रखिए, नहीं तो इसका ही दुरुपयोग, जैसे क्योंकि माया है, जैसे है चाकू है, चाकू छुरी है, उसकी सब्जी भी काट सकते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं, इस प्रकार से यही धन आपको सर्वश्रेष्ठ पद के लिए भी निमित्त बना सकता है और यही धन आपको नए विकर्मों का निर्माण करने के लिए निमित्त बन सकता है। तो इसलिए धन को संभाल करके उपयोग करिए, धन के आधार पर बनी हुई धारणाएं या धन के आधार पर बने हुए पाप कर्म आदि का बहुत 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 गहराई से समझने की जरूरत है, वो आप समझ लीजिए और अपने जीवन के अंदर तन मन धन के सबको संपूर्ण सफल करने का, जिसके कारण हमारे धन के आधार पर हमारे जीवन में दुख अशांति ना आ जावे। इसलिए बाबा ने कहा विकल्प जो व्यस्त संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं और खुशी की अनुभूति नहीं करने देते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि सांप का चेहरा, जो ब्यूटी पार्लर की लास्ट बात आई, चेहरा सदा ऐसे खुश मिजाज हो कि जो कोई भी देखे आपको चेहरा तो आपके चेहरे से उनको प्रेरणा मिले भी हमें भी ऐसा बनना है। हमारा अल्टीमेट ब्यूटिफिकेशन, डिवाइन ब्यूटिफिकेशन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, लक्ष्य क्या है कि आपका चेहरा उनको प्रेरणा दे कि हमें भी ऐसा बनना है। याद आ गया सबको, सब अपना चेहरा आज से जाकर के ये डिवाइन आईना बाबा ने दे दिया है, डिवाइन ब्यूटिफिकेशन का आईना दे दिया है, उसके आधार पर अपना चेहरा ऐसा बनाइए जिसके अंदर नयन जो है, चेहरा जो है, जीवन जो व्यवहार जो है, इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ बने और सबको सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रेरणा दे। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया कि जब ब्रह्मा बाबा को आपने देखा फरिश्ता रूप में, ब्रह्मा बाबा ने क्या कर्म किया, तो आप कितना भी समस्याएं आई तो भी बाबा ने अपना चेहरा जो है उसके अंदर कोई भी प्रकार की मुरझाहट नहीं आई। मैं अनुभवी हूं, क्या हुआ था 62 की बात है, हम यहाँ आए हुए थे 62 याद नहीं है साल करा आगे पीछे हो सकता है, मम्मा पंजाब आदि दिल्ली आदि का चक्कर लगा करके आई थी। उस जमाने में बाबा ने, बाबा के एक सेवा केंद्र जो है यूपी का, उसके अंदर काफी घमसान हो रहा था, आर्य समाज ये आदि ने किया हुआ था, तो आकर के मम्मा ने सबको सुनाया, बाबा को भी सुनाया, क्लास के अंदर भी सबको सुनाया कि ऐसे ऐसे इस सेवा केंद्र पर घमसान हुआ है। तो बाबा ने सबको सुना था, हमको भी लगा कि ये गलत बात हो रही है, हमारा भी मुख जो है थोड़ा पीला हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ कितना हैरान करते हैं, हाँ घर में ताला लगा दिया, नीचू नहीं जा सकते हैं, क्या क्या करे। हमारे बलदेव भाई के ऊपर सांप फेंक दिया, क्या क्या किया लोगों ने वहां पर। तो मुझे भी वो लगा, तो बाबा का मुख हर्षित मुख था, तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आपने ये बात सुनी, हाँ वहां का इस प्रकार का कारोबार हुआ है इसलिए तो आपको कुछ नहीं हुआ। बाबा ने कहा बाबा तो सदा ही अडोल अचल अडोल स्थिति में ही रहता है। मैंने कहा इसका क्या, कैसे आप रहते हो, क्या युक्ति है। ये बाबा की युक्ति आप सबको बताता हूँ। बाबा ने युक्ति बताई मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा ने कहा कि बाबा को मालूम है कि 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी उसी प्रकार से अभी हो रही है, इसलिए बाबा की स्थिति अचल अडोल रहती है। बाबा को कोई भी बात की फिक्र चिंता नहीं रहती है, बाबा कोई भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प नहीं करता है, समझता है ये ड्रामा चलता है, ड्रामा के आधार के अंदर ये सब बातें आती रहेगी। आप समझा, हम सब के पास इस प्रकार की समस्याएं आएंगी तो मन में क्या करना चाहिए, 5000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी ऐसे हो रही है। हमारे पास रोज यहाँ पत्र आते, इसका ऐसा हुआ, इसने ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, वो इस प्रकार की कहानियां, लंबी चौड़ी कहानियां, रामायण भागवत कईयों के जीवन में आते हैं, यहाँ लिख करके भेजते, हमारे पास आते हैं, हम पढ़ते हैं, हमको लगता है वो कितना दुख से लिखते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, रो रो करके लिखते हैं। हम कहते हैं कि ये बात ऐसी छोड़ो, आप मन में रखो, हाँ 5000 वर्ष पहले हमारे व्यवहार में जीवन में जो भी हुआ वो, और इसके कारण क्या समझो, जो भी हो रहा है वो अच्छा है, इनसे भी अच्छा होने वाला ही, हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ बनने वाला ही है, इस प्रकार की शुभ भावना जीवन में धारण करो। तो इस प्रकार से कल बाबा ने क्या कहा, हाँ ब्रह्मा बाप समान बेफिक्र बादशाह बनो, ब्रह्मा बाप के समान बेफिक्र बादशाह बनो। आप सबने सुना होगा, मुझे आज सुबह एक भाई ने कहा कि जब आपने गुलदस्ता बाबा को दिया तो जानकी दादी ने आपको कहा बेफिक्र बादशाह बनो, जानकी दादी ने क्यों आपको कहा। मैंने कहा मुझे क्या मालूम, जानकी दादी ने क्यों कहा आपको बेफिक्र बादशाह बनो। हमने कहा हम तो क्या, हमारे बड़े दादियां है, वो जो भी हमको कहे वो हमारे लिए आज्ञा है, और आज्ञा है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। हाँ तो कल बाबा ने हम सबको आज्ञा दी बेफिक्र बादशाह बनो। एक मुसीबत यही है, दो शब्द हिंदी में है, दो शब्द हिंदी में है, एक है बेफिक्र बादशाह और दूसरा है, मैं बोलूं दूसरा है बेपरवाह बादशाह, दूसरा है बेपरवाह बादशाह। तो दोनों बाजू बाजू में है। कभी कभी क्या होता है, हम बेफिक्र के बदले में क्या होता है, बेपरवाह बादशाह हो जाता है। अब आके याद करेंगे
शिव पिता को, अब याद करो मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, Thank you. शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। सतयुग में अब तुम्हें आना है,
धाम में तुम्हें
सतयुग में अब तुम्हें आना है,
धाम में तुम्हें जाना है।
ओम शांति। तो हमारी बात चल रही थी बेफिकर और बेपरवाह। कभी कभी मैं अपना विचार बताता हूं, मुझे एक बात में लगता है कि हमारे बहन भाई बेपरवाह बनते हैं। किस बात के लिए? ये जो हमारे झंडे जो लगे हुए हैं, झंडियां लगी हुई है ना, ऊपर लगी हुई है तब तक तो ठीक है। कई बार हम देखते हैं रास्ते के अंदर फटे हुए झंडे आदि लगे हुए रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं, सबका पांव उसके ऊपर आता है, सब कुछ होता है। ये झंडा हमारा श्री बाबा के ज्ञान का प्रतीक है, सिंबल है, अरमान है उसके अंदर। और वो हमारे, हम उसको डेकोरेशन के रूप में लगावे ठीक है, लगाना चाहिए कि नहीं वो दूसरी बात है, पर अगर लगाते हैं तो उसके बाद अगर खत्म हो जाता है, पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो उसको अच्छी तरह से संभाल करके कचरे के बॉक्स में डाल देना चाहिए। अपने पांव के अंदर नीचे में उसको कुचलना नहीं चाहिए। ये मेरी खुद की व्यक्तिगत मान्यता है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, पर मेरी मान्यता है कि झंडा का इतना सम्मान के रूप में साथ साथ इनका भी सम्मान इतना ही करना चाहिए। नहीं होता है, पांव में आता है, क्या क्या हो जाता है। आज भी ये सबको यहाँ लगा दिया, हमारी फर्ज है ये झंडे की शान मान और आन बान शान जो कहते हैं ना, वो निभाने की हमारी फर्ज है। तो फिर क्या हुआ, हम बाबा ने फिर भी बहुत बहुत व्याज दिया, और जैसे ब्रह्मा बाबा न्यारा और प्यारा होकर दिखाया, इस प्रकार से बाबा ने कल हमको न्यारा और प्यारा बनने का दिखाया। कई बार मैं शब्दों की गहराई में जाता हूं, तब हमसे पूछना, मैं पूछता हूं, सब अपने आप को पूछता हूं, न्यारा का अर्थ क्या और प्यारा का क्या अर्थ। हमारी हमारे यहाँ जो भी बहनें यहाँ क्लासेस कराती है, नक्की करते हैं, उनको क्या मैं कह रहा हूं कि न्यारा और प्यारा की गहराई का अर्थ बना करके सबको न्यारा कैसे बना जाए, बनाया जाए या बन जाए, और प्यारा भी कैसे बना जाए। दोनों अलग अलग चीजें हैं, न्यारा बनना अलग चीज है, प्यारा बनना अलग चीज है, और न्यारा और प्यारा बनना वो तीसरी स्टेज है। वो तीन अलग अलग स्टेज है, उसकी गहराई में जाकर के देखना कि सिर्फ हम न्यारा बनते हैं, सिर्फ हम प्यारा बनते हैं, या हम न्यारा और प्यारा बनते हैं, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार से बाबा ने बात करके मुरली समाप्त किया। 56 मिनट बन करके 8:40 को बाबा ने पूछा आज कौन सा दिन आया हुआ है, तो बताया गया इंदौर और भोपाल के बारे में। इंदौर जोन वालों से बात किया, वो तो आप जानते हैं, बहुत अच्छी बातें कही, इंदौर वालों ने बहुत अच्छा पुरस्कार किया। दोनों जोन की महिमा बाबा ने बहुत अच्छी रीति से कही, वो आप सबने पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं। और इसी प्रकार से 4,000 या एक जोन से 5,000 दूसरे जोन से आए थे, ये सारी बातें हम सबने सुनी, भोपाल जोन की भी सुनी। इस प्रकार से सुन करके बाद में विदेशियों के साथ बात किया, विदेशियों के साथ बाबा ने जो बात किया उसमें एक बहुत सुंदर बात की जो आज भारत में नहीं हो रही है, बाबा ने विदेशियों को इसका फल दिया, श्रेय दिया कि विदेशियां जो भी है ना वो इजी होकर के चलते हैं, परिवर्तन बहुत कमाल करके दिखाते हैं। जिस बात का कि हम ब्राह्मण कल्चर के हैं, बताया ना कितनी बड़ी चुनौती है विदेशियों के लिए। कितने देश आज हमारे ज्ञान ही 137 देशों में गया हुआ है। हर देश की संस्कृति, हर देश के विचार, हर देश के कल्चर, हर देश की भाषा, हर कईयों के धर्म अलग, अनेक प्रकार के सब बातें, अनेक प्रकार की वैरायटी होते हुए भी बाबा ने कहा इजी होकर के चलते हैं। और देखा कि ब्राह्मण कल्चर में चल रहे इतना इजी होकर के चलते हैं। ठीक है, ब्राह्मण कल्चर की बात तो सब जानते हैं ना। अभी हम अपने आप भारतवासी अब पूछे कि हम भारतवासी अपने भी जन्म के आधार पर मिले हुए कल्चर, जैसे वहां पर है मैं अमेरिकन हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन हूं, मैं रशियन हूं, इन सब बातों को भूल करके मैं ब्राह्मण हूं इस प्रकार से हमारे डबल फॉरेनर समझते हैं। और बाबा ने उस बात को मंजूर भी किया कि चल बहुत इजीली चल रहे सब अपने लौकिक शरीर के आधार पर बने हुए कल्चर, भाषा, धर्म आदि को भूल करके बाबा ने उनको महिमा की, उनकी किया। भारतवासी भी कब ये करेंगे? हमारे पास बॉम्बे में फंक्शन हुआ था, पालखी वाला करके एक एडवोकेट, बहुत सीनियर एडवोकेट है, उसने आकर के कहा हिंदुस्तान में मुझे भारतीय नहीं दिखाई पड़ता है। पालखी वाला ने कहा मुझे भारतीय नहीं दिखाई पड़ता है, मुझे यहाँ गुजराती दिखाई पड़ता है, मराठी दिखाई पड़ता है, पंजाबी दिखाई पड़ता है, बंगाली दिखाई पड़ता है, कर्नाटका दिखाई पड़ता है, ये अलग अलग स्थान के दिखाई पड़ते हैं, पर हम सब भारत के हैं, भारत माता की संतान है, भारत देश में जन्म लेने का सौभाग्य जिसको मिला हुआ है ऐसे हम हैं। इस प्रकार का गौतम उसने ये कहा हम भारत के हैं, भारतीय है, वो हमको दिखाई नहीं पड़ता। इनसे एक कदम आगे जाकर के हम कहेंगे हम सब जब तक हमारे लौकिक संबंधों के आधार पर बने हुआ हमारा लौकिक कल्चर संस्कार, संस्कार के साथ साथ बनी हुई बातें इनको नहीं भूलेंगे और सच्चे ब्राह्मण नहीं बनेंगे, ब्राह्मण कल्चर नहीं अपनाएंगे, तब तक बाबा भारत के बच्चों को भी ये टाइटल नहीं देंगे कि आप बच्चे सच्चे ब्राह्मण बनकर के ब्राह्मण कल्चर के बन गए हो। ये हमारे देश की खूबी है। आज क्या हो गया मैं आपको मैं दुख से कहता हूँ, हमारे जोन जो बन गए, बाबा ने कहा है जोन जो बने हुए तो सेवा के लिए बने हुए हैं, उसके बदले हम जोन को भी लक्ष्य बना दिया और उसमें भी अभी क्या हो गया है सब जोन हो गए। अभी हमने एक देखा एक जोन ने एक सेंटर ने पर्चा छपाया था उसमें सब जोन का नाम लिखा था कि हमारा ये सब जोन है, न जोन को याद किया नहीं और किसी को याद किया। हम इस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन एंड डिवीजन के रूप में अपने जीवन व्यवहार को कर रहे हैं। हम सबका पहला ही लक्ष्य होना चाहिए जैसे विदेश के बहन भाइयों को बाबा ने कहा आप सब ब्राह्मण कल्चर में हल्के होकर के चलते हो, लाइट वेट के चलते हो, इस प्रकार से हम अपने देह और देह के आधार पर बने हुए कल्चर को छोड़ करके हम ब्राह्मण कल्चर के कब 100% बन जाएंगे। ये आश बाबा की भी है, मेरी भी है, आप सब की भी यही आश होंगी कि हम सब, क्योंकि बाबा ने पहले ही कह दिया, बाबा ने यज्ञ रचा हुआ है, यज्ञ में ब्राह्मण की जरूरत है, कहा ना पहले शुरू में, तो हमको ब्राह्मण बनाया हुआ है तो हम सबको ब्राह्मण कल्चर तो अपनाना पड़ेगा ना। प्रश्न ये है कि हमने अपने आप को 100% ब्राह्मण कल्चर के रंग में रंगा दिया है। मम्मा एक भजन गाती थी चढ़ो रे मोहे आज अलौकिक रंग, बहुत सुंदर मथुराबाई खरे का गाया हुआ है, महात्मा गांधी की भी प्रार्थना सभा में गाते थे, मम्मा भी गाती थी चढ़ो रे मोहे आज अलौकिक रंग, इस प्रकार बहुत सुंदर वो भजन है। हम सब के अंदर भी ये ब्राह्मण जीवन का रंग लगना चाहिए 100%। और पुराना जो भी रंग है, गुजराती हूँ, मराठी हूँ, पंजाबी हूँ, बंगाली हूँ या आदि जो भी है, वो रंग निकल जाना चाहिए। बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया मालूम है, वो रंग निकालने के लिए सिंधी भाषा का था, सब सिंधी बोलते थे ना, तो बाबा ने क्या कर दिया, सिंधी नहीं बोलो, और क्या कहा, सजा दिया। आज अगर किसी ने सिंधी में शब्द बोल दिया, बाबा कहते थे आज उसको पापड़ नहीं मिलेगा। जो पुराने दादियां बहन भाई होंगे उनको मालूम होगा, बाबा ने इस प्रकार की एक साधारण सजा रखी थी कि सिंधी शब्द क्यों बोला, मैं सिंधी हूं इसलिए सिंधी बोल सकता हूं, इस प्रकार का नहीं। सेवा के लिए भाषा बोलना ये अलग बात है, और तो हमारी भाषा बाबा की भाषा होनी चाहिए, हमारा विचार बाबा के हिसाब से होना चाहिए, हमारा कल्चर हमारी संस्कृति सभ्यता आदि ब्राह्मीण संस्कृति के होनी ही चाहिए। ये स्वप्न है, मेरा भी स्वप्न है, आपका भी स्वप्न है, सबका स्वप्न है कि हम बाबा के ये वरदान ये सर्टिफिकेट ले कि हम सब 100% ब्राह्मण कल्चर के बन गए हैं। ये हो सकता है 100% ब्राह्मण कल्चर के बन जाए, ये देखना। जैसे विदेशियों को बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, भारतवासियों को भी हमारी ये दिल की आश है कि भारतवासियों को भी बाबा से सर्टिफिकेट मिले कि सभी 100% ब्राह्मण कल्चर के बन गए हैं। बहुत कई बातें समस्याएं आती है इसमें, इसलिए हम उसमें गहराई में नहीं जाते हैं, पर ये बात आपको ध्यान में रहे ब्राह्मण कल्चर। फिर बाबा ने दूसरी एक बात कही, हम मधुबन वालों से मिलना शुरू किया 9:02 पर, और नीचे ऊपर आज मधुबन वालों से बात किया, उसमें बहुत एक अच्छी बात कही निर्भय भाई को, जो कहा ना निर्भय को मुबारक हो, साथियों को मुबारक हो, जो निमित्त बने उन सबको मुबारक हो, बाप ने देखा मेहनत अच्छी किया हुआ है। और उसके बाद बहुत एक सुंदर बाबा ने बात कही, बहुत सुंदर, कि जमाने के हिसाब से सेल्वेशन अच्छी लगी, जमाने के हिसाब से समय के साथ साथ हमारे कारोबार में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में, साधनों में, संपत्ति सब में परिवर्तन करना ही चाहिए जमाने के हिसाब से। ये मकान बनाने के आदि के मैं बताऊं, आप लोगों को तो मकानों का इतिहास मालूम नहीं है, मुझे पूरा ही इतिहास मालूम है। मकान बनाने के लिए हम निकले तो हमारे चंद्रहास दादा कहते थे, रमेश भाई ये क्या मकान बनाने की क्या जरूरत है, ये सीमेंट कॉन्क्रीट के मकान बनाना, आदि झुपड़े आदि बनाने चाहिए, विनाश होने वाला है, विनाश में क्या होगा। मैंने कहा भाई साहब ये तो प्रोग्राम बना हुआ है, हम प्लान बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। कहा नहीं नहीं बनाने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हम अव्यक्त बाप दादा से पूछ लेंगे। अव्यक्त बाप दादा आए तो बाबा की मुरली के बाद मैं चंद्रहास दादा को लेकर के बाबा के पास गया। मैंने कहा बाबा ये हम मकान बना रहे हैं, सीमेंट कॉन्क्रीट के बना रहे हैं, हमारे चंद्रहास दादा मना करते हैं कि नहीं बनने चाहिए, झुपड़े आदि बनने चाहिए, विनाश के टाइम पर क्या होगा, फालतू में ये पैसा बर्बाद होता है आदि आदि उन्होंने कहा। वो मैंने बाबा को कहा, बाबा ने हंसते हुए कहा कि बाबा कहते हैं मेरे को कहा कि उसको एक झुपड़ा बना दो, उसकी इच्छा है ना एक झुपड़ा, उसको एक झुपड़ा बना दो, बाकी तुम तो मकान बनाओ। मैंने कहा क्यों बाबा, कहा जब विनाश का होगा ना तो उसके सिर पर झुपड़ा गिरेगा, आप सब तो शांति से अपने मकानों में आराम से बैठेंगे, आपको आराम मिलेगा। तो बाबा ने भी समय के साथ साथ सल्वेशन के अंदर परिवर्तन करने के लिए कहा, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। बाबा ने भी अपने सिद्धांतों में समय के साथ साथ परिवर्तन किया हुआ है। आपको बताऊं दो एग्जांपल मैं दे सकता हूं। बाबा जब कल बताया ना, हम बाबा दिल्ली में गए थे, मेजर के सामने कोठी में गए थे, आर एस वर्मा करके मेजर थे, उनकी कोठी में गए थे, वो मिलिट्री में थे, उसकी बटालियन थी, सब सैनिक सामने बैठे हुए थे। इन्होंने एक सवाल पूछा कि हम सब तो कुमार हैं, हम सब तो कुमार हैं, और हमको हमने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया हुआ 15 साल का बॉन्ड है, हमने तो छोड़ नहीं सकते 15 साल, और कुमार है, हमको अपना क्वार्टर नहीं मिल सकता है, अपने हाथ से खाना बनाने नहीं मिल सकता है, हमको तो जो क्वार्टर के हमारे जो कॉमन मेस होती है वहां से खाना मिलता है, वही खाना पड़ता है, क्या करें हम पवित्र अन्न हमको नहीं मिल सकता है। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि आप सब हाँ ऐसा हो ऐसा वैसा नहीं कहा, नहीं बाबा ने कहा आपकी मजबूरी है मैं समझ सकता हूँ। मजबूरी का नाम आप जानते हैं, गाया भी हुआ है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, उसी के हिसाब से बाबा ने कहा बाप को याद करके दृष्टि दे करके खा सकते हैं। ये बाबा ने समय के साथ साथ अपने सिद्धांतों में भी, क्योंकि पवित्र जीवन पवित्र बनाना वो लक्ष्य है, इसके लिए पवित्र खाना ये साधन है, साधन को साध्य मत बना दो, ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से बाबा ने उनको छुट्टी दिया। दूसरा एक बहुत बड़ा बाबा ने साल्वेशन दिया माताओं को, माताएं यहां इतनी बैठी है इसलिए मैं बताना चाहता हूं। मैंने बाबा को, मैं कलकत्ते में गया हुआ था, वहां बहुत अच्छी सेवाएं हो रही थी, वहां प्रदर्शनी किया आदि आदि, बड़ा फंक्शन किया, मेला किया, साकार बाबा के सामने मैं बैठा हुआ था। मैंने बाबा को कहा कि बाबा बंगाल में मैंने एक बात नोट किया, मैंने बाबा को कहा बंगाल में मैंने एक बात नोट किया कि बंगाल में क्या होता है, कोई भी स्त्री शादी करके घर में आती है ना तो एक हाथ में मछली होती है, वो मछली लेकर के घर में पांव रखती है और फिर वो जो एक कटोरा होता है उसमें एक चावल होता है उसको हम पांव के लगा करके गिरा करके फिर घर में प्रवेश करती है और वो मछली बाद में बनानी पड़ती है, उसको खानी पड़ती है और वहां नियम है। मैंने बाबा को कहा बंगाल में बहुत करके, सबका नहीं है, कहीं कहीं बंगालियों में नहीं है नियम, कहीं में है, कहीं घरों में ऐसा नियम है कि हर सौभाग्यवती स्त्री को अपने पति की आयु लंबी रहे इसके लिए मछली खाना चाहिए। मैंने कहा बाबा इसलिए वहां ईश्वरीय सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा ने खुद ने कहा है जिस सेवा केंद्र पर बहने माताएं होती है वो सेंटर हरा भरा रहता है। बाबा ने खुद ने माताओं बहनों को ये कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा बाबा परंतु वहां तो सेवा नहीं बढ़ सकती, इसका कारण यही है, तो हम क्या करें? उन माताओं को कहे कि नहीं आप ज्ञान में नहीं चल सकती अगर आप मछली खाते हो तो। बाबा ने कहा मुझे किसने मना करने का, किसने कहा कि उनको ज्ञान में नहीं चलना चाहिए? बाबा ने कहा वो पवित्र रहती है। कहा मैंने कहा पवित्र रह सकती है, सब कुछ हो सकता है, अगर वो मछली खाना बंद करेंगी उसकी सास कहेंगी मेरा बेटा मर जाएगा, उसकी ननंद कहेंगी मेरा भाई मरेगा, उसका भाई बड़ा भाई कहेंगे मेरा छोटा भाई मरेगा, उसका बेटा कहेगा मेरा पिता मर जाएगा, इस प्रकार से चारों ओर से अगर वो मछली खाना बंद करेंगी तो चारों ओर से उसके ऊपर प्रेशर आता है। भगवान का भले मछली खाए, बाबा को याद करके खाए, कुछ भी करे पवित्र तो रहे, बाबा को याद तो करती रहे। 2-5% मछली खाने के कारण कम मिलेगा इतना, पर इसके कारण 90% 95% की प्राप्ति से वंचित क्यों हो रह सकती है? मैंने इसलिए ये बात कही कि बाबा ने कहा ना समय के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति के सर्कमस्टेंसेस के आधार पर उनके साथ उस प्रकार से व्यवहार करके उनको साल्वेशन देना चाहिए। इसलिए बाबा ने कल कहा कि जमाने के हिसाब से, हम जमाने में रहते दुनिया में रहते तो दुनिया में रहने वालों का दुनिया में कईयों के कई प्रकार की परिस्थितियां होती है और इसलिए एक समान एक प्रकार का व्यवहार एक प्रकार का दंड नहीं होना चाहिए उनके लिए। बाबा ने जो कल कहा जमाने के हिसाब से साल्वेशन के रूप में करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करते हैं। यज्ञ ने भी ये किया हुआ है, आपको मालूम है एक जमाने में यज्ञ में पांडव भवन में एक ही टेलीफोन था 2-3 नंबर का और एक ही मोटर कार थी, डॉज मोटर कार थी, एम्बुलेंस टाइप की थी, दादा आनंद किशोर चलाते थे, एक ही, और वो ही यज्ञ इतना विशाल रूप धारण कर दिया, यज्ञ पांडव बना, भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, शांतिवन बना, नदी किनारे बना, सोलार बना, स्टूडियो बना, मनमोहनी कॉम्प्लेक्स बना, इतना बना और उसके परिणाम रूप आज कितने कितने टेलीफोन्स है, कईयों के पास 2-2 मोबाइल है, सब कुछ है, कितने मोबाइल्स, कितने टेलीफोन्स, कितने कंप्यूटर्स है और कितने वाहन है, आपको मालूम नहीं होगा यज्ञ में कितने वाहन है, 610 वाहन यज्ञ में है, 610 या 2-व्हीलर या 4-व्हीलर, कारोबार करने के लिए, कारोबार के लिए समय बचाने के लिए, इधर से इधर भागदौड़ करने के लिए अनेक प्रकार की बातें होती है इसके लिए। आज देखो इतनी बसेस रखनी पड़ी है, कारण कि 68 प्रकार की गाड़ियां आना जाना आबू रोड स्टेशन से होती है, उसमें से 75 से 80% हमारी गाड़ियां रात को ही आती, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हो गई, यहाँ जयपुर दिल्ली जाने वाली और यहाँ तो जोधपुर जाने वाली, बीकानेर जाने वाली, यहाँ पर कहाँ कहाँ जाने वाली है, सोमनाथ जाने वाली है, बॉम्बे जाने वाली, मद्रास जाने वाली, कहाँ कहाँ रात को आती है। तो रात को आने वाले बहन भाइयों को सर्वेशन तो देना पड़ेगा, बस तो रखनी पड़ेंगे, बाजार के गाड़ी वाले रात को नहीं आएंगे, तो साधन रखने पड़ेंगे सर्वेशन देने के लिए, परंतु साधन सर्वेशन देने के लिए है, साधन में साधन का दुरुपयोग कर करके उसका सुख के रूप में परिवर्तन मत कीजिए, वो तो साधन हमारे लिए पांव में जंजीर न बन जाए, ये बात ध्यान में रखने का। बाकी साधन साधन है और साधन का आधार साधन साध्य को सिद्ध करने में, प्राप्त करने में सहज रूप में मिल जाए, इसलिए उसका पालन करना मानना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप देखिए मकानों के अंदर भी परिवर्तन करते ही रहते हैं, इतना बड़ा हॉल बनाए, अभी आगे के आगे क्या होगा वो मालूम नहीं है, बनता ही रहेगा। हमारे यज्ञ का इतिहास जो है ना बारे में इलस्ट्रेटेड वीकली के अंदर आर्टिकल छपा हुआ था, खुशवंत सिंह करके उसके एडिटर था, सरदार खुशवंत सिंह, आपको कईयों ने नाम सुना होगा, वो आया था यहाँ, उनके आदमी फोटोग्राफ लेकर के गए, और इन्होंने एक फोटोग्राफ जो है एक फोटोग्राफ जिसमें एक मिस्त्री जो है ना ऊपर पांडव भवन में इंद्रप्रस्थ है उसको बनाने का मिस्त्री वो काम कर रहा था, ईंटें लगा रहा था, तो मैंने उनको कहा कि और उसमें भोली दादी किचन में खाना कुछ कर रही है, पूरी तल रही थी, ऐसा कुछ था, उसका फोटो था। मैंने कहा ये क्या, उनके बदले में हमारी दादियों का फोटो डालो, हमारी प्रवृत्तियों का फोटो डालो। उसने कहा नहीं, मैंने समझा है आपकी संस्था में दो चीजें मुख्य है, एक किचन मुख्य है। मैंने कहा क्यों मुख्य किचन है? इन्होंने मेरी आंखें खोल दी, कहा आपकी संस्था में किचन सबसे ज्यादा मुख्य वही है, इसके कारण आप बाहर का तो खा नहीं सकते हो। मैंने कहा अच्छा, तो क्या आप बाहर का खा नहीं सकते हो इसलिए किचन तो होना ही चाहिए, अपना घर का अपना हाथ का पवित्र भोजन ये आपका फंडामेंटल जीवन की धारणा है, इसलिए आपकी संस्था में किचन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। और दूसरा ये मकान जो बन रहा है मिस्त्री कर रहा है, मैंने इसके नीचे में लिखा हुआ है टाइटल, एवर एक्सपांडिंग इंस्टीट्यूशन, सदा बढ़ती रहने वाली, सदा विस्तार प्राप्त करने वाली ये संस्था है। मैंने तब मेरी भी आंखें खुल गई, मैंने कहा देखो एक थर्ड पार्टी बाहर की एक आदर्श एक अच्छे लेखक ने दो बातें पकड़ लिया कि हमारी संस्था में किचन बहुत बड़ा भारी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और ये आप सब जानते हैं, हमारे कई सेवा केंद्र ऐसे हैं वहाँ बाबा का कमरा नहीं होगा पर किचन तो सब जगह पर होगा, कोई ऐसा सेंटर है जहाँ किचन नहीं होगा? मैंने कहीं देखे हुए वहाँ बाबा का कमरा छोटे है पर किचन तो होता ही है। और दूसरा उनका जो शब्द है एवर एक्सपांडिंग, बढ़ता ही रहता है। पहले पांडव भवन था उसमें हिस्ट्री हॉल बना, उसके बाद सामने का मेडिटेशन हॉल बना, उसके बाद उसके सामने अपने यूनिवर्सल पीस हॉल बना, इसके बाद ज्ञान सरोवर बना, इसके बाद शांतिवन बना, इसके बाद नदियां बनी, तपोवन बना, अभी और क्या क्या बनता रहेगा। हाँ दिल्ली में ORC बना, हैदराबाद में बना शांति सरोवर, आदि आदि करके कितना विस्तार को समय के साथ साथ सर्वेशन देने या लेने के लिए बन रहा है। तो इसलिए प्लीज एक बात ध्यान रखिए, बाबा ने जो कल कहा क्या कहा आप मैं फिर से बता देता हूँ, जमाने के हिसाब से सर्वेशन, सिद्धांतों के अंदर और बात है परंतु हमारे विचारों में हमारे व्यवहार में जड़ता नहीं आनी चाहिए, हमारे विचारों में आदि में जड़ता नहीं आनी चाहिए, समय के साथ साथ हम अपने आप में परिवर्तन करते हैं या नहीं, वो देखना चाहिए। अंग्रेजी में मैंने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है, स्टेटिकनेस इज डेथ एंड डायनामिज्म इज लाइफ। परिवर्तन और विश्व परिवर्तन, बाबा ने भी कल शब्द यूज किया, परिवर्तन ये जीवन है, ये जीवन है, ये जीवन है, इसको स्वीकार करना ही चाहिए और परिवर्तन की चुनौती को स्वीकार कर करके गुड बेटर बेस्ट के रूप में आगे बढ़ना ही चाहिए। ये जीवन मंत्र बना करके कल बाबा ने हम बच्चों को दिखाया कि जमाने के हिसाब से जमाने के हिसाब से साल्वेशन के रूप में परिवर्तन करना जरूरी है। और उसी के आधार पर क्या होगा, विश्व परिवर्तन होगा। हम ही नहीं परिवर्तन करेंगे, अपने में ही परिवर्तन नहीं करेंगे तो दुनिया का कैसे परिवर्तन होगा। अभी अभी हमने बाबा को संदेश भेजा था, हमें बात इसमें आई है बात, हमने कहा बाबा हमारे के म्यूजियम आदि के अंदर परिवर्तन करना चाहिए, वो पुराने जमाने के बने हुए हैं। पिछले टाइम हमने बाबा को संदेश भेजा था, बाबा ने कहा कि हाँ करना चाहिए, बाबा ने हमको छुट्टी दिया। हमने कल संदेश भेजा कि हमने बनाया हुआ है, प्रोग्राम बनाया हुआ है, अपना पहला म्यूजियम जो है नकी लेक का, जो बाबा ने पहला म्यूजियम बनाया साकार अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणा से, उसके अंदर परिवर्तन करेंगे। और हमने नया नाम भी सोचा हुआ है, आपके सामने रख देता हूँ, नया नाम, मैं अपना नया म्यूजियम का नया परिवर्तन के रूप में नाम, अभी तक तो है विश्व नव निर्माण संग्रहालय, उसके बाद में सिंपल नाम स्पिरिट ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, आपको पसंद है स्पिरिट ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, इसमें सब कुछ आ जाता है, स्पिरिट ऑफ ब्रह्मा कुमारीज में विश्व परिवर्तन सबके सब बातें आ जाती है। तो मैंने कल बाबा से संदेश भेजा था कि बाबा हमने इस प्रकार से सोचा हुआ है, इसके द्वारा शुरुआत करें। बाबा ने कहा अच्छी बात है, बाबा ने कहा हमको, आप सबने कहा मीटिंग करो, मीटिंग करके इस बात को पास करो, बाबा तो बैठा ही हुआ तैयार ये मदद करने के लिए, तो इस प्रकार से मीटिंग करके करेंगे। और जो मेरा म्यूजियम जो है उसको हम नया परिवर्तन उसको करेंगे, उसमें 3 डायमेंशन डिजिटल क्या कहते अनेक प्रकार की नए नए प्रकार की बातें जो है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले जर्मनी का एक भाई होलोग्राम के आधार पर बना हुआ ब्रह्मा बाबा का चित्र लेके आया था, होलोग्राम के आधार पर, दबर विदेशी जो यहाँ बैठे उनको मालूम है होलोग्राम क्या होता है। तो बाबा ने, मैंने उस भाई को परिचय कराया, बाबा को दिखाया, तो बाबा ने मुझे ही कहा कि बच्चे ऐसे भविष्य के चित्र इस होलोग्राम आदि के द्वारा बनने चाहिए। मैंने कहा ठीक है बाबा, पर तो हमारे पास हिंदुस्तान में तो वो टेक्निक आई नहीं थी, विदेशों में थी, अब वो टेक्निक हिंदुस्तान में आई है, उसके आधार पर साधन बन सकते हैं, हो सकता है, और अब तो डिजिटल हो गया है, क्या क्या हो गया है। तो इसलिए हम ये म्यूजियम जो है पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे और डिजिटल 3 डायमेंशन होलोग्राम आदि आदि के द्वारा परसेप्शन के रूप में, अनुभूति के रूप में म्यूजियम बनाएंगे। वो ये परिवर्तन होने चला है। मुझे कल बाबा की ये महावाक्य बहुत अच्छा लगा कि समय के साथ साथ साल्वेशन के रूप में परिवर्तन करना ही चाहिए। इसलिए 21वीं सदी का हमारा ये 3 डायमेंशन का म्यूजियम बना हुआ होगा, लोग आकर के देखेंगे, अनुभूति करेंगे। अब तक हमारा म्यूजियम जो भी है वो मैसेज ओरिएंटेड म्यूजियम है, संदेश देने के लिए है। अब बाबा जो चाहते हैं अनुभूति प्रधान एक्सपीरियंस ओरिएंटेड म्यूजियम होने चाहिए। ये परिवर्तन, ये साल्वेशन, ये साधन में परिवर्तन कर करके आप ही नक्की करो, म्यूजियम ऐसा बने जिसमें संदेश मिले या जिसके द्वारा अनुभूति हो, संदेश मिले, भाई शक्कर मीठी है अच्छी है, वो संदेश मिले वो अच्छा है, या संदेश आप शक्कर मिले आप जीभ पर रखो और इसकी जो स्वीटनेस है आप उसको अनुभव करो, क्या अच्छा है। आप सब अच्छा तो अनुभव करने की बात को ही पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से अनुभव प्रधान हम चाहते हैं साल्वेशन इस प्रकार का मिले, और एक म्यूजियम बनेगा इसके आधार पर फिर और बनता रहेगा। जैसे पहली प्रदर्शनी बनी 64 में और उसके बाद में आज कितनी प्रदर्शनियां हो गई है, इस प्रकार से म्यूजियम में परिवर्तन होगा। समय के साथ साथ साल्वेशन होना ही चाहिए, ये आप सब मानेंगे, ठीक है ना। आप सबकी राय है समय के साथ साथ परिवर्तन करना चाहिए तो हाथ खड़ा करें। चलो अच्छी बात है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा उमंग उत्साह का हौसला बढ़ा दिया। फिर बाबा ने जो नई बात कही, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, मैंने बाबा को, निर्भय भाई ने भी कहा, उसके बाद मैंने भी कहा, बाबा ये बात बराबर है, कईयों के लिए आप अभी जो बोल रहे हैं वो गुड मॉर्निंग भी है। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को जो है ना, हिंदुस्तान से 12.5 घंटा पीछे है, हिंदुस्तान से 12.5 घंटा, अभी सबको 12:30 बजा हुआ है, 12.5 घंटा पीछे है, माना रात के 12 बजे होंगे, कल के शनिवार के 12 बजे हुए होंगे, तो इसके हिसाब से कल रात को बाबा मुरली चला रहे थे, समझा 10 बजे 9 बजे बताया, तो अमेरिका में क्या हो जाएगा, 12.5 घंटा पीछे होगा, तो सुबह ही होती रहेंगे। इसलिए बाबा ने जो कल कहा, मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने जो गुड मॉर्निंग कहा वो अमेरिका के लिए है और गुड नाइट कहा हुआ है वो भारत के लिए, क्योंकि समय विचित्र है, 12.5 घंटा पीछे है, तो इस प्रकार से एक हंसी की बात भी बाबा के साथ हो गई। फिर बाबा ने जो भी कहा, हाथ उठा वो जो कहा वो तो आप सब जानते हैं, इसकी बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। फिर बाबा ने 5 मिनट सबको योग कराया और उसके बाद जो कही है वो बहुत सुंदर बात है। बाबा ने कहा रोज रोज ऐसे बीच बीच में 5 मिनट बिल्कुल अशरीरीपन का अनुभव करते चलो, क्योंकि समय आगे बहुत नाजुक आने वाला है, ऐसे टाइम पर अगर अभ्यास नहीं होगा, ये वार्निंग है बाबा की, ऐसे टाइम पर अगर अभ्यास नहीं होगा और कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा तो सक्सेस नहीं हो सकेंगे, इसलिए बीच बीच में 2 मिनट 1 मिनट या 5 मिनट भी अशरीरी बनने का अभ्यास अपने दिनचर्या के प्रमाण अवश्य करते चलो, कंट्रोलिंग पावर बढ़ाते रहो। समझा, समय, आने वाले समय की सूचना। बाबा क्या है, बाबा जानता है, बताता भी है, बाबा ने कहा भी है कि बाबा ये बच्चे ये ड्रामा रियल है, आर्टिफिशियल नहीं है, रियल है, और इसके लिए रियल ड्रामा की सब बातें मैं खोल करके नहीं बता सकता हूँ, पर तो सावधानी दे सकता हूँ, सूचनाएं दे सकता हूँ, इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि आने वाला समय कैसे होगा। और इसीलिए हम बाबा ने अशरीर बनने का अनुभव का जीवन में दिन के अंदर, और बाबा ने कितना लिबरल, बाबा कितना है, कितना लिबरल है, देखिए बाबा ने क्या कहा, बीच बीच में 2 मिनट 1 मिनट 5 मिनट जो भी होगा अपनी दिनचर्या के प्रमाण अवश्य पालन करो, किसी को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती, इसलिए बाबा ने कहा कम से कम 1 मिनट तो बाबा की याद में अशरीरी बनने का अभ्यास करो, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट अभ्यास क्या होना चाहिए, अशरीरी बनने का, कंट्रोलिंग पावर जीवन में धारण करने का, ये बहुत जरूरी है, कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल करने का, अपने आप को कंट्रोल करने का। कहीं ऐसे होता है, एक भाई ने बहुत गुस्सा किया, मेरे पास फरियाद आई उसके बारे में, तो मैंने उनको कहा कि भाई क्यों, कहा मैं क्या करूं, कई ऐसी बातें बन जाती है ना तो मेरे में क्रोध आ ही जाता है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। कई बार ऐसा ही होता है, कहीं क्रोध में आ जाते हैं, कहीं को रोना आता है, कहीं को क्या क्या आ जाता है, कहीं को लोभ आदि आदि विकारों की परीक्षा आती है, उस टाइम पर अगर कंट्रोलिंग पावर हमारे में नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए कंट्रोलिंग पावर बहुत जरूरी है हर जगह पर, मोटर चलाने वाला हो तो उसके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएंगे और क्या हो सकता है, टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो इस प्रकार से एक्सीडेंट जीवन में न हो इसके लिए कंट्रोलिंग पावर एक दृष्टिकोण से है, और दूसरा दृष्टिकोण है अशरीरी बनेगा, क्यों इतनी उस टाइम पर समस्याएं होंगी, खाना पीना रहना आदि करने की बातें इतनी होंगी, जिसको कहते हैं हमने स्पार्क में भी ये कहा हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे समय पर अपने आप को कैसे मजबूत करना, मजबूत कर चलाना, व्यवहार करना, ये वो सीखने की जरूरत है। और इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में बाबा ने बताया हुआ है कि ऐसा शरीर पड़ने का अभ्यास बढ़ाइए, अशरीर पने का अभ्यास। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इस प्रकार का आत्मिक अवस्था, आत्मिक अभ्यास, आत्मिक भान, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, इस प्रकार का योग बहुत जरूरी है। कईयों से मैं पूछता हूँ, आप योग करते हो आधा घंटा, इसमें अशरीर पने का कितनी मिनट अभ्यास होता है? कहीं कहते तो होता ही नहीं है, मन में संकल्प विकल्प चलता है, इधर का सारी दुनिया का संकल्प विकल्प चलता है, उसमें कभी कभी एक मिनट, दो मिनट, डेढ़ मिनट जो है हम पूरा ही अशरीरी बन सकते हैं। हमने कहा यही तो अभ्यास बढ़ाना है। दुनिया में रहते दुनिया से न्यारा बनना, कमल पुष्प समान जो बाबा कहते, कमल कमल पानी में रहते हुए पानी से कचरे से अधिक से न्यारा रहना, इस प्रकार का आदर्श गृहस्थ व्यवहार अशरीरी पने का हमारा अनुभव होना ही चाहिए। ये कल बाबा ने समय की सावधानी, हमारे पास एक किताब बनी हुई है बाबा की मुरलियों में, समय की सावधानी की आई हुई किताब है, यहाँ बनी हुई है, हमारे गांधीनगर के बहन भाइयों ने वो किताब बनाई है, यहाँ बेचने में रखी हुई थी, अब स्टॉक में है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, आप डिमांड करेंगे तो मैं आत्म प्रकाश भाई को कहूंगा कि उसको छपवा दे। समय की सूचना बाबा ने इतनी बार अनेक प्रकार की समय की सावधानी की सूचना दी हुई है, परंतु क्या करें, मैं हमेशा ही बाबा को कहता हूँ बाबा आपने एक बात की हमारे बारे में गलती किया है। उन्होंने कहा क्यों बाबा? आपने दो कान दे दिया है ना, दो कान दिए हैं ना, तो क्या होता है जो कान में यहाँ से जाता है ना वो यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ से जाता है यहाँ निकल, अंदर जाता ही नहीं है। इसलिए बाबा आप जितनी भी सावधानी देते हो अंदर जाती नहीं है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चली जाती है, यहाँ तो ऊपर से चली जाती है। इस सावधानी को हम जीवन में धारण पूर्ण रूप में नहीं कर सकते, ये करुण वास्तविकता है, आप मानो या न मानो, परंतु हर एक अपने जीवन से देख ले, समझ ले, क्या हम ये बात कर सकते हैं। कल ही रात को एक भाई से बात कर रहा था, कहता था मैं क्या करूं, मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं। मैंने उनको कहा कि आप सर्कमस्टेंसेस के गुलाम हो या सर्कमस्टेंसेस आपके गुलाम है? तो वास्तव में तो ऐसा होना चाहिए, सर्कमस्टेंसेस हमारे गुलाम होना चाहिए, परंतु हम सर्कमस्टेंसेस के गुलाम हो जाते हैं। और इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ, साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है, तो आपको साइकोलॉजी भी बाबा सिखाते हैं, मैं भी उसके आधार पर बता रहा हूँ। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है कि अगर आप अपनी कमजोरी के वकील बनेंगे और कमजोरी के लिए कहेंगे अरे ऐसे तो होना पड़ता है, करना पड़ता है, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, जैसे आज भी सुबह बाबा ने कहा महारथी करते हैं, तो महारथी को हम फॉलो कर, बाबा ने कहा जब महारथी भी ऐसा करते समझो महारथी नहीं है, ऐसी ब्लैंक ब्लैंक बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है। तो उसी के हिसाब से आप सब नक्की करिए, हम सब नक्की करें कि अगर साइकोलॉजी के सिद्धांत के मुताबिक अगर हम अपने कमजोरी के वकील बनेंगे ना, तो ये सिद्धांत सनातन सत्य है कि आप उस कमजोरी को कभी भी जीत नहीं सकेंगे। याद रहा, हम अगर अपनी कमजोरी के वकील बनकर के कहेंगे क्या करें, जैसे आज बाबा ने मुरली में साफ अगर तो मुरली में रिपीट जो हुई ना संडे का था इसके कारण, तो इस प्रकार से जो भी हमारी कमजोरियां जो है उसके अगर हम वकील बनेंगे ना, तो याद रहे उस कमजोरियों के ऊपर हमारा कभी भी विजय नहीं होगा, वो कमजोरी ही हमारे ऊपर जीत पाएंगे। भी आपको नक्की करना है, हम कमजोरी के मालिक बने, यहाँ कमजोरी हमारी मालिक बने, इंद्रिय हमारी मालिक बने या हम इंद्रियों के मालिक बने, हम हमारे स्वभाव के मालिक बने या हमारा स्वभाव हमारा मालिक बने, इस प्रकार से ये द्वंद्व द्वैत चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसलिए बलकल बाबा ने सबको कहा आने वाला समय, समय की सावधानी सूचना बाबा सबको दे रहे हैं, कल भी दिया, उम्मीद है हम सब समय के सावधानी को स्वीकार कर लें। फिर तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया 9:41 को स्टेज का कार्यक्रम चला, मोहिनी बहन से मिले, निर्वीर भाई को कहा, मुझे कहा, मैंने मेरे साथ जो बात किया वो तो आपको बताया, विदेश की बहनों को भी बताया, शांति बहन के बारे में बताया, ग्लोबल हॉस्पिटल की बात, डॉक्टर विजय लक्ष्मी जो है उसका कल अचानक शरीर छूट गया, फिर बाबा ने ये झंडा है उसको लहराया और झंडे के साथ साथ कहा, आप सबके दिल में बाप दादा बैठा है, सदा साथ है, वह दिन भी आएगा जो बाप का झंडा हर एक अनुभव करेगा कि ये मेरा बाप है। देखा बाबा ने क्या कहा, हर एक ये अनुभव बाप का झंडा हर एक अनुभव करेगा कि यह मेरा बाप है। ये झंडा नहीं है परंतु क्या है, मेरा बाप है, इतना उसका गौरव करना चाहिए। सबके मुख से निकलेगा मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा आ गया है, बहुत अच्छा, सभी ने अपने दिल में ये झंडा लहराया है, आदि आदि बात कही हुई है। इस प्रकार से कल बाबा ने 10:20 को बाबा ने विदाई लिया और 10:21 एक मिनट में गुलजार दादी आ गए और हम सब मतलब अपने अपने स्थानों पर जाकर के हम सब ने विश्राम किया। तो यह है कल की मुरली का सार, उम्मीद है कि आप सबको इसके अंदर जो बाबा ने कल बात कही, समय की सावधानी दिया, समय के साथ साथ परिवर्तन करना क्या, ये सब आप सबको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब क्या होगा, ये मुरली सुनने की मुरली जो सुनी हुई है उसका रिजल्ट होगा। और इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ, मुरली क्या है, हमारा कारोबार ऐसा होना चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट आपको बाबा को सबूत देना पड़ेगा कि बाबा आपने जो कल की मुरली के हिसाब से जो कहा, कंट्रोलिंग पावर कहा, जो भी आदि जो भी कहा, हमारा चेहरे के बारे में जो कहा, वो सब करके दिखाएंगे। इस प्रकार की बातें करके हम मुरली समाप्त किया। हम भी अभी एक मिनट बाबा को याद करके, पौना बज रहा है, बाबा को याद करके समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।